इस कान में भी दिखाना चाहिए जगह कृष्ण प्रभु की कुटी वैष्णव बनने की श्री राधा पाद की सारथी ललिता विशाखा की जय श्री गोलिताई भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गंधरा श्रीमद भागवतम की जय स्वामी भक्त बृंद की जय गाय गो श्री गुरु
है उनके लिए भी लाए
हैं।
कोई बात नहीं, मैं भी है,
एक है और
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नष्टपायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके।
पहले क्लास
लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कप, उससे पहले हमने पढ़ा था कर्दम मुनि और देवहूति का बारे में, जिसमें हमने गृहस्थ आश्रम का ग्लोरीज और देखा था कि कैसे सो ग्लोरियस। उसके बाद लेकिन कपिल भगवान कपिल देव माता देवहूति को जब शिक्षा देने तो माता देवहूति पूछ रहे हैं, उनका मेन क्वेश्चन ये था कि हाउ टू गेट लिबरेटेड, है ना। हम लोग इस भौतिक संसार में हम लोग प्रकृति के तीन गुणों से बंधन में हैं, तो ये कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं, दिस इज आवर प्राइमरी कंसर्न। उसके लिए क्या उपाय, तो उसके लिए भगवान कपिल ने काफी ज्ञान दिया और उसने ने कहा कि जो अटैचमेंट हम सबका भौतिक शरीर के प्रति या भौतिक रिलेशन के प्रति, वो अटैचमेंट हमें ट्रांसफर करना है भगवान की प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, वो लिबरेशन की रास्ता वो खुलता है। और फिर वो वर्णन कर रहे थे कि कैसे हम बंधन क्रिएट होता है और हम बनते चले जाते हैं, तो उस प्रकार बता रहे थे कि हम अनजाने में हम बनते चले जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे वो सारे चैप्टर्स, सो इंटरेस्टिंग कि किस प्रकार से जीव इस संसार में बनते चले जाते हैं। तो जैसे होता है कि क्लाउड, क्लाउड को पता नहीं होता है विंड की पावर क्या है और वो क्लाउड खुद बहते चला जाता है विंड से, उसी तरह इस मैटेरियल वर्ल्ड की जो इल्यूशन की पावर क्या है पता नहीं चलता है जीव को और वो उस पावर से बहते चले जाते हैं, एंटेंगल होते चले जाते हैं एक के बाद एक। और उसमें फिर उन्होंने वर्णन किया कि खास करके स्त्री पुरुषों का आकर्षण के बारे में वर्णन किया कि वो बंधन का सबसे, जितने भी बंधन के कारण है उसमें से सबसे ज्यादा ये करता है। तो हमने पहले ऑफ कोर्स हमने ग्लोरी सुना है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं तो वो क्या है स्त्री के लिए, ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ स्त्री डेंजरस नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष बंधन के कारण है और पुरुष के लिए स्त्री बंधन के कारण है। और उसको काफी श्लोकों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो एटलीस्ट डिवोटीज जानते हैं इसको, और इसलिए प्रभुपाद ने काफी एक्सप्लेन भी किया है कि गृहस्थ और गृहमति का। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने कहीं भी बताया कि अटैचमेंट और अफेक्शन में अंतर होती है, तो एटलीस्ट प्रिंसिपल हमने कपिल देव भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दोज हु आर डिजायरिंग फॉर लिबरेशन, ठीक है आवाज तो आ रही है ना पीछे, दोज हु आर डिजायरिंग टू बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट, सो फर्स्ट ही कैनॉट बी कैनॉट रिमेन अटैच्ड टू दिस प्लेजर, है ना, तो इस प्लेजर से उनको मुक्त होना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स उसका कई हायर प्रिंसिपल है, पर बेसिक चीज जो है वो एक्सप्लेन किया है कि दिस इज दिस अटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, और उसको करना हम सबको डिफिकल्टी होती है, तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, तो हम सबको प्रयास करना है, तो उसमें कैसे भगवान को चरण को देखने से, भगवान को फेस को देखने से धीरे धीरे ये डिजायर हमारा कम होता हो सकता है। बट वी हैव टू टेस्ट आवर सेल्फ कि हम लोगों का वो डिजायर कम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था भगवान, उसके बाद फिर और बता रहे कि इसका फोर्स इतना ज्यादा है, आप जानते हैं इतना फोर्स ज्यादा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस दिन भी क्लास में डिस्कस हुआ था कि कोई सोचता है कि नहीं मैंने तो उसको कन्वर्ट कर लिया, इल्यूशन शक्ति स्त्री की जो शक्ति है वो तो मेरे को नहीं करता है, मैं तो बहुत एडवांस हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि व्यास देव ने लिखा है कि जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति वो भी इल्यूशन हो जाता है, और उन्होंने डाउट आया उनके मन में, और फिर बाद में पता चला कि वो अट्रैक्ट हो गए वो, ठीक है। तो इट्स नॉट सो काइंड ऑफ इजी थिंग कि हम सोचे कि हम तो उससे मुक्त हो गए, इट डजंट मैटर, एक छोटा पिक्चर भी हमको मोहित कर सकता है, है ना, इट्स सो पावरफुल, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट कि हम लोग पावरफुल हो ही नहीं सकते हैं, है ना, माया शक्ति, सो वी आर शुद्ध जीव, भगवान की माया शक्ति बहुत, लेकिन केवल हम माया शक्ति को पार कर सकते भगवान को आश्रय लेकर, क्योंकि भगवान ही सब सुपीरियर है और भगवान ही अफेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए केवल जब भगवान से हमारा आकर्षण होगा तभी ये चीज दूर हो सकती है ना। तो ये कई कई जगह पे आते रहते हैं, भागवतम में भी हमने पढ़ा, दीति का उसमें भी पढ़ा, उसमें भी बताया कि सब कुछ जानते हुए भी जो है कश्यप मुनि फिर जानते ये समय सही नहीं है फिर भी क्या, और प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया उसमें, तो लेकिन वो बताया कि वो एल्योरमेंट, वो फोर्स जो दीति कश्यप को किए थे वही फोर्स जो है एक तरह से हरिदास ठाकुर को किए हैं उन्होंने, लेकिन हरिदास ठाकुर इफेक्टेड नहीं हुए क्योंकि हरिनाम के प्रभाव से, तो ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मर्सी है कि अगर हम रियली चाहते हैं उस चीज़ को, ऑफ कोर्स है ना, इस चीज़ से ही हम सब बंधे हुए हैं इस संसार में। ये इनविजिबल वो है, क्या है, बार्स है जेल का, जो स्त्री पुरुष के जो आकर्षण है, इनविजिबल बार्स है। तो जेल में जाते हैं तो बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि बार्स होते हैं, है ना। तो लेकिन इसका जो जेल है, ये बार्स है लेकिन दिखाई नहीं देता, खुला भी है, हम जा भी सकते निकल, लेकिन नहीं जाते क्योंकि वो बार्स से बंधे हुए। तो ये बहुत टफ है, पर जो डिवोटी सिंसियरली एफर्ट करता है और सिंसियरली भक्ति का प्रयास करते हैं, वो धीरे धीरे उसको जय करने लगते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत हम बहुत एडवांस लेवल पे प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर अंदर उससे अफेक्टेड है और हम बंधन है, मैं है। लेकिन हो सकता है एक बहुत सरल सिंपल डिवोटी वो रेगुलरली सिंपल वैसे कर रहा है, हो सकता है वो गृहस्थ में भी है लेकिन वो इस सारे वासना से मुक्त है, ऐसे भी हो सकता है। और हम हो सकते हैं सोच रहे हैं कि वो तो कोई ज़्यादा सेवा नहीं कर रहा है, हो सकता है वो तो सिर्फ ग्रह घर में रह रहा है और जो है मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो ये है ना, इतना कुछ किया इतना कुछ किया, लेकिन अंदर हम हो सकता है उस बीमारी से मुक्त हो ही नहीं पाए, और वो क्योंकि ग्रेजुअली सिंपल सिंपल कर रहा है और हो सकता है उससे मुक्त है। तो ऑफ कोर्स हमें अपने आप को देखना है कि हमें उस चीज से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि हम उस चीज से अटैच्ड रहे, हम स्त्री पुरुष के आकर्षण से अटैच रहे और हम भगवान के धाम में पहुंच जाए, है ना। तो ये लिबरेशन के लिए एक ऑब्स्टेकल है।
अटैचमेंट में और आकर्षण में क्या अंतर है? ये आकर्षण तो रहेगा ही,
स्त्री पुरुष का एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो फिर अटैचमेंट अगर
वर्ड में हो सकता है गलती हो रहा हो, है ना। तो मेन पॉइंट है कि स्त्री पुरुष से जो आकर्षण होती है, जो प्लेजर होता है, स्त्री पुरुष का जो है ना, वो चीज से मुक्त होना है, वो चीज हमें बंधन की क्रिएट करता है, है ना। ये भगवान कपिल देव उसमें कहीं श्लोकों में उसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता ना
क्या, नहीं उसमें वर्णन आता है, प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे 100 times सुंदर होते हैं स्त्री, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड उस एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, दे आर अटैच्ड टू कृष्णा, ठीक है। समझ गया एसेंस क्वेश्चन क्या है?
कदम मुनि के बारे में बता रहे थे, कदम मुनि जब पहले को ब्रह्मचारी जीवन लाइफ बिताए थे तो फिर वो गृहस्थ में कैसे गए? वो तो भगवान के साथ बात थे,
पढ़े नहीं आप
और अगर जब भगवान उनके घर में आए तो भगवान जब किसी भक्त के घर में आएंगे तो फिर उनको घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है?
ये क्वेश्चन है आपका, ये डिस्कस तो क्या हम लोगों ने किया, हमने सारे डिस्कस किया, वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि उनका वो गृहस्थ में क्यों आए, ये क्या है, क्यों आए, कौन बताएगा?
क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो
उनको प्रजापति थे, उनको ये सर्विस करना था, क्रिएशन करना था, उनका ऑर्डर दिया था और फिर उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया, उसके बाद उन्होंने वो किया, एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी किया।
बताते हैं कहीं कि जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं,
हाँ
तो वो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं या कपिल भगवान बता रहे हैं?
कपिल भगवान मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, कपिल भगवान इंस्ट्रक्शन दे कर रहे हैं, जो माता देवहूती को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान कपिल देव दे रहे हैं, हाँ। और वो पूरा चीज जो है वो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को, ठीक है। और वो सारी चीज सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं उनको परीक्षित, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि जो कर्दम मुनि जो है ये स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण नहीं है, वो आकर्षण में नहीं आए, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, वो स्त्री पुरुष के आकर्षण जो अभी हम देखते हैं, जो मूवीज में दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं कि स्त्री पुरुष से आकर्षण की एक ही लक्ष्य होते हैं, है ना, वो सेंस एंजॉयमेंट है ना, जो हमारा जो सेंसेस है वो स्त्री का सेंस को सेटिस्फाई करना और पुरुष की सेंस को सेटिस्फाई करना, उस उद्देश्य से हाँ स्त्री पुरुष जब जब भी स्त्री को देखते हैं पुरुष के मन में ये भावना जागृत होती है, इसलिए उनको जोशित कहा जाता है, कि जोशित स्त्री को बोलते हैं कि वो एंजॉयमेंट की भावना को जगाता है। तो देखने से ही आता है कि अगर वो मिल जाते हैं तो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखने मात्र से ये भावना जागृत हो जाती, सेंस एंजॉयमेंट की भावना, जो एक कंडीशन सोल में होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन सोल की वो है स्टेट है, और उसी को लेके सारे संसार जो है भ्रमित है। इज सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी पूरा संसार में। ठीक है, और तो कभी हो सकता है, हम लोग जब पिछले बार कर्दम मुनि और देवहूति के ग्लोरीज के बारे में वर्णन किया, तो हो सकता है कोई ब्रह्मचारी को लगे कि यार हम तो मिस ही कर जाएंगे ये चीज, कितना सुंदर चीज है। हाँ, तो इसलिए कपिल भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये चीज डोंट थिंक कि जो गृहस्थ आश्रम में जो जा रहे हैं दे आर लाइसेंस्ड कि वो एंजॉय करते रहे। नो, ये चीज अगर करेगा भी कोई तो किसका नुकसान होगा? अगर कोई करेगा एंजॉयमेंट, उनके पास है एंजॉयमेंट के ऑप्शन, है एंजॉयमेंट के ऑप्शन तो है ही हर जगह पे, आपके घर में हो या बाहर हो, कहीं सारे गवर्नमेंट कहीं खुल के रखा होता है, हाँ करते रहते हैं। पशु का पास कोई दिक्कत नहीं होती है एंजॉयमेंट करने के लिए, कहीं जगह पे मतलब मिलते रहते हैं स्त्री पशु, वो करते रहते हैं एंजॉयमेंट। तो ह्यूमन लाइफ में भी ऐसे कई सारे सिचुएशंस हैं, कई सारे फैसिलिटीज हैं, वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। स्त्री चाहिए तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है, गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे व्यवस्था बनाया हुआ है। अगर सेंस को ही ग्रेटिफाई करना है तो ऐसे भी होता है, और घर में भी हो सकता है जो हाउस होल्डर्स हैं। लेकिन अगर करेगा भी यस, फुल इंडिपेंडेंस करें या ना करें, हम लोग के पास पूरा इंडिपेंडेंस, पर ये भी बता रहे अगर करेगा भी तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान, उस एंजॉयमेंट हमें बंधन का और क्रिएट करते चले आ रहा है। दैट इज व्हाट कपिल भगवान कह रहे हैं कि वो इतना स्ट्रांग होता है वो डिजायर उस सेंस एंजॉयमेंट की, कि विंड से जो है क्लाउड बहते चले जाता है, उसी तरह हम लोग लिविंग एंटिटी उस भावना से बहते चले जाते हैं, एक के बाद एक कार्य करते चले जाते हैं, जस्ट टू गेट दैट प्लेजर।
घर के प्रमुख मतलब करते जाते हैं, वही पाप करते जाते हैं, जो मुखिया होते हैं घर के, वो पाप करते जाते हैं, और
वो आगे जाके आएगा जामिल की स्टोरी कि कैसे है ना उस चीज से फिर, और ये चीज हमें दूसरे पापों में भी लगाता है। ठीक, एक के बाद एक, एक चीज नहीं, उससे फिर दूसरे पाप में लग जाते हैं, फिर दूसरी चीज करना पड़ता है। तो इट स्टार्ट्स लाइक, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?
जी के कश्यप जो थे, हरिदास ठाकुर कश्यप से ज्यादा अच्छे भक्त थे।
देखो ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं को, ऐसे कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम अभी बहुत ही लोअर स्टेज में, हमारा बुद्धि बहुत कम है, वी आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर ग्रेट पर्सनैलिटीज, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे महाराज के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते कौन महाराज। लेकिन कोई एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं, आप बोल सकते हो कि लोकनाथ महाराज बहुत अच्छा गाते हैं, यू कैन डू लाइक दैट, है ना, क्योंकि महाराज ने बहुत प्रैक्टिस किया है, महाराज बचपन से है, सो यू कैन ग्लोरीफाई लाइक दैट। लेकिन यू कैनॉट से कि उन महाराज जो है वो महाराज, उन महाराज से अच्छे, यू कैनॉट से, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हो कि हरिदास ठाकुर की जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने वर्धन, उन्होंने हरि नाम को करने के कारण उन्होंने ये कर पाया। एक मिनट तो जी, वो मधुमंगल प्रो का नंबर है किसी के पास? मधुमंगल प्रो का आपके पास होगा? वो ना मोनरो प्रो बोल रहे थे कुछ वृंदावन से किसी के लिए वो लेना है, मेडिसिन लेके आना है, तो मधुमंगल प्रो से। हाँ आपके पास है? आप मेरे को भेज दो, ऐसा करते हैं। हाँ प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मैं अभी मैसेज करता हूँ, अभी मैसेज करता हूँ, ठीक है ओके। आप बोल दीजिए वृंदावन प्रभु के फादर के लिए मेडिसिन लाना है, मोनरो प्रभु ने कहा था, तो आप डिटेल्स बताइए उनसे, है ठीक है ओके। अभी मैं 5 मिनट में आपको भेजता हूँ ओके ओके, SMS कर देता हूँ। लास्ट में 16 है, ये वो नंबर है ना, प्रॉपर चलता हुआ नंबर है ना। समझ गए, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम उसको प्रिंसिपल्स को, ये सारे जो है सारे भगवान के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज हैं, तो वो लोग एक दूसरे को ऐसे चीजों से ही तो हमें सिखाए, हम सीखते हैं बस। तो हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सब सिचुएशन सबके लिए डिफिकल्ट होती है, कोई भी है ना, लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे लेवल पे गए हैं हरिनाम के कारण कि वो ऐसे स्टेज को भी वो पार कर। ठीक है,
तो जी फिर ऐसे समझना चाहिए कि ये लोग सिखाने के लिए ऐसा एक्ट कर रहे
हैं। हाँ, तो और क्या और क्या समझना चाहिए कि उनका हमें उनका सजा देना है, उनको सजा देना है,
पढ़ते तो फिर
उनके ग्रेडिंग करना है कि ये अच्छा है, इनके लेवल पे ही है, फिर टॉप में ही है, फिर सेकंड ही है, रैंकिंग करना है,
जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब देखने
के लिए और किस लिए, हमारे सीखने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, राइट। हम लोग यहाँ पे अपने सीखने के लिए बैठे हैं, हम ब्रीडिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो वो मैथ कभी लेक्चर भी देना है तो अदरवाइज वी विल बी गॉन फ्रॉम भक्ति, वी नीड मर्सी ऑफ ऑल दीज डिवोटीज, है ना। कहाँ है हम, व्हाट इज आवर पोजिशन, ये बस बताते हैं कि ये शक्ति इतना स्ट्रांग है कि सच पर्सन हु हैज सो मच कंट्रोल, सो मच पावर, दे गेट अफेक्टेड बाय इट 3 गुणों से, व्हाट इज आवर पोजीशन, जस्ट उसको समझना। आवर पोजीशन कुछ भी नहीं, हम एक मोमेंट में हम चले जाएंगे यहाँ से, फिनिश हो जाएंगे, सो वी हैव टू बी मोर हम्बल, दैट्स इट, ठीक है। और प्रिंसिपल लेना, ठीक है, समझ में आया, ये सर नो कि ये जो एंजॉयिंग टेंडेंसी है, एंजॉयिंग बॉडी वो है, पावर है, स्त्री पुरुष के बीच में एंजॉयिंग पावर है, ये चीज दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, तभी तो ये चल, लेकिन इससे हमें मुक्त होना है, ये भगवान कपिलदेव ये बता रहे, इस चीज से मुक्त होना है। तो ये वर्णाश्रम सब उसके पर्पस ही है कि हम धीरे धीरे उस एंजॉयिंग टेंडेंसी से हम मुक्त हो सकते, और ये हरिनाम और सेवा ये सब चीज से धीरे धीरे हम उसको उससे मुक्त होंगे, ठीक है ओके। आप भगवान कर्दम मुनि का हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि उनके जो गृहस्थ आश्रम है ये जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म में है, सर्विसेज के लिए है, और ऐसे ही गृहस्थ डिवोटीज हैं जो प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते हैं, ऑल गृहस्थ डिवोटीज दे नो दिस प्रिंसिपल, है ना, कि वो दे एंटर, दे डू सो मच हार्डशिप जस्ट टू सर्व कृष्णा, ठीक है। और इसलिए बताया कि वो जो हमने पढ़ा था कि कर्दम मुनि का जो ये गृहस्थ लाइफ है उसके बारे में सुनने के लिए सिद्ध लोग भी सुनते हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इतना पवित्र है, ठीक है ओके। तो फिर हम लोग आगे फिर बता रहे हैं उसकी बात क्या होती है, इसलिए फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर माता के गर्भ में आते हैं, और माता के गर्भ में कैसे कैसे प्रकार की कष्ट होती है, और फिर हम जन्म लेते हैं, और फिर जो है हम यहाँ पे आके फिर भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद फिर याद दिला देते हैं कि आप भूलना नहीं है, आपको यहाँ पे पूरा भक्ति करना है, और कितना समय है पता नहीं है, पर आप कर लो ताकि इस चीज से मुक्त हो के भगवान के धाम में गो बैक होम बैक टू गार्डन, ठीक है, है ना। और उसमें इतना आनंद है भक्ति में कि रूप गोस्वामी बताते हैं लेवल 4 में कि वो लाइफ की जितना भी इस मेटेरियल वर्ल्ड के जो हाईएस्ट प्लेजर है वो एक ड्रॉप की बराबर है भक्ति में। और भक्ति का जो आनंद है वो समुंदर की अनलिमिटेड है। तो आप पॉइंट समझ गए, तो किस चीज को आप छोड़ रहे हो? जो ब्रह्मचारी छोड़ते किस चीज को छोड़ते हो? ड्रॉप को छोड़ते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? समुद्र मिलता है अनलिमिटेड। हाउ वी कैन, और वो डिवोटी जो हमने और भी पढ़ा है भागवतम में प्रभुपाद बताते हैं कि जो डिवोटी जो स्पिरिचुअलिस्ट है दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर दैट काइंड ऑफ प्लेजर। जैसे एक क्षुधार्त व्यक्ति है वो उसको फूड बिना भोजन बिना उसको कुछ भी दो वो संतुष्ट नहीं होता है, उसी तरह एक जेन्युइन डिवोटी को कृष्ण भक्ति की प्लेजर को छोड़ के उसको कुछ भी दे दो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड ही इज नॉट लुकिंग फॉर दैट।
स्पिरिचुअल प्लेजर है उसको सीक करना फिर अनकंडीशनल
यही अचिंत भेदाभेद तत्व है ना, सीख कर भी रहे हैं और सीख नहीं भी कर रहे हैं, है ना, सीख कर रहे। वो भी एक्सप्लेन किया था हमने पिछली बार कि वो प्लेजर जो प्लेजर एक्चुअली देने में आता है लेने में नहीं आता है, कृष्ण को प्लेजर देने में वो प्लेजर आपको मिलेगा। We think कि मुझे वो प्लेजर मिलना है, then you will not get that pleasure. तो कृष्ण को देने का जो प्लेजर है वो प्लेजर अगर आप डिजायर करते हो दैट यू कैन डिजायर कि आई वॉन्ट टू सर्व कृष्ण, आई वॉन्ट टू सर्व कृष्ण अनकंडीशनली, आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्ण, तो दैट डिजायर वी कैन हैव। Why? Because by doing that we feel very happy. We will feel very happy. ठीक है? So that we can have. Okay. उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। आज पिछले बार का हम लोग कुछ क्लास हुई है नहीं ना, तो उसमें है था कि दक्ष का, हाँ शिव जी का दक्ष का सेक्रीफाइस है ना। तो दक्ष भी प्रजापति है, ठीक है, और तो और शिव जी महान वैष्णव है। तो दक्ष का यज्ञ, तो जब हम बचपन में थे तो हम सुनते थे कहीं भी जाना भाई बहुत झगड़ा उगड़ा हो जाए ना कुछ तो बोलते दक्ष यज्ञ हो गया है वहाँ पे, ऐसे ही बोलते थे, कहावत हो जाता है। तो हम सोच रहे दक्ष यज्ञ क्या हो, दक्ष यज्ञ हो गया तो मतलब दक्ष यज्ञ जो है वो एक तरह से जहाँ में पूरा ही मतलब वो हो गया, खराब हो गया, जो प्लान था वो प्लान कुछ भी नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे उसमें स्टोरी आता है वर्णन कि कैसे जो है दक्ष जो वहाँ पे सभा हुआ था, सारे बड़े बड़े ऋषि आए थे और वहाँ पे वो करना था रिलीजियस सेक्रीफाइस करना है, तो उसके लिए दक्ष दक्ष उस समय चीफ थे, तो उनको वो आए और उसको सेक्रीफाइस को शुरू ही करना है। तो जब दक्ष उस वहाँ पे शिव जी भी थे ब्रह्मा जी भी थे और सारे ऋषि मुनि थे वहाँ पे, भृगु मुनि थे और सारे ऋषि मुनि थे, सब ग्रेट पर्सनल। जब दक्ष आए तो चीफ ऑफ ऑल प्रजापति वो आए तो सब उनको रेस्पेक्ट कर रहे करने लगे, सब खड़े हो गए, सिर्फ दो लोग को छोड़, कौन थे दो?
ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे तो वो नहीं हरे, और शिव जी जो है वो मेडिटेशन में थे, है ना, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे, तो वो हाँ जो है हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं, तो उनको वो ही नहीं रहता है कि ये टिकट मतलब क्या है या कोई आया नहीं आया, उनको कुछ पता ही नहीं, वो एब्जॉर्ब है कृष्ण की उसमें चिंतन में। तो दक्ष जो आए बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग खड़े हुए सब, है ना, तो वो बैठने ही वाले थे उस समय उनके नजर पड़ गया शिव जी के उसमें, और देखे वहां पे शिव जी बैठे हुए, शिव जी नहीं खड़े हुए, है ना, तो उनको काफी गुस्सा आया, है ना, और फिर उन्होंने कुछ बोले। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं बोलते हैं। की कन्या दक्ष की कन्या सती के हस्बैंड
यज्ञ के टाइम पे वो थे संजय
बाद में, हाँ हाँ संजय
बाद में तो बनाते ही नहीं है, पहले नहीं होते
ठीक है। बिफोर टेकिंग हिज सीट हाउएवर दक्ष वॉज वेरी मच ऑफेंडेड to see Lord Shiva sitting and not showing him any respect. At that time, Daksha became greatly angry and his eyes glowing, he began to speak very strongly against Lord Shiva. All sages, brahmanas and fire gods present, please hear me with attention. दक्ष कह रहे हैं कि प्लीज हियर मी विद अटेंशन, फॉर आई स्पीक अबाउट द मैनर्स ऑफ जेंटल पर्सन्स, आई डू नॉट स्पीक आउट ऑफ इग्नोरेंस और एनवी। वो पहले अपना पर्पस बता दे रहे हैं कि डोंट, मैं जो भी बोलने वाला हूँ अभी उसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं कोई एनवी की कारण नहीं बोल रहा हूँ, या अज्ञानता के कारण नहीं बोल रहा हूं। शिवा हैज स्पॉइल्ड द नेम एंड फेम ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड हैज पोल्यूटेड द पाथ ऑफ जेंटल मैनर्स, बिकॉज ही इज शेमलेस ही डज नॉट नो हाउ टू एक्ट, he has already accepted himself as my subordinate by marrying my daughter in the presence of fire and brahmanas, he has married my daughter who is equal to Gayatri and has pretended to be just like an honest person, he has eyes like monkeys, yet he has married my daughter whose eyes are just like those of a deer cub, nevertheless he did not stand up to receive me nor did he think it fit to welcome me with sweet words, I had no desire to give my daughter to this person who has broken all rules and civility because of not observing the required rules and regulations, he is impure, but I was obliged to hand over my daughter to him just as one teaches the messages of Vedas to a Shudra. ठीक है, आगे और भी बहुत सारे बता रहे हैं। On the request of Lord Brahma, I handed over my chaste daughter to him, although he is devoid of all cleanliness and his heart is filled with nasty things. है ना? तो अगर हम इस सब चीज पढ़े तो हम क्या देखते हैं, है ना, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है?
पॉजिटिव उनको रेस्पेक्ट चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट अगर नहीं मिलता है तो उनका फॉल्स ईगो क्रश हो जाता है, तो उससे एंगर उत्पन्न होता है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ है, वो एंगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं,
है ना।
या ये भी हो सकता है कि जो सामने वाला उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है हम उसके बारे में नहीं जानते,
नहीं जानते हैं, है ना, सामने वाले का पोजीशन नहीं जानते हैं। और सामने वाले पोजीशन अगर छोटा भी है, नहीं भी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो भी क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है,
तो समाज के लिए हो सकता है गुरु जी, जैसे वर्णाश्रम धर्म है तो समाज के लिए गलत एग्जाम्पल हो सकता है, और वो अगर राजा के पोजीशन में है तो उनका शासन करना जिम्मेदारी है, लेकिन उस पोजीशन के आर में अगर इंद्र तृप्ति कर रहा है देन इट विल बी डिफिकल्ट। मतलब
हाँ, तो आप क्या कह रहे हो इसमें?
मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए राजा आए हैं और जनरल एटिकेट्स ये है कि वो खड़े हो सब, और वो जनरल एटिकेट्स को मान लीजिए कोई फॉलो नहीं कर रहे, और राजा अगर ऐसा विनम्र होकर सोचे पोजीशन, क्योंकि उनका सेवा है कि राजा के जैसे सेवा करे, उनका वहाँ पे सेवा नहीं है कि वो विनम्र बने साधारण बने, उनका वो सेवा नहीं। अगर राजा बन के वो अपना सेवा करे तब तो देट इज गुड, लेकिन उनका विनम्र बने रहे कोई बात नहीं, नहीं भी कर रहा हुआ तो क्या बात है।
ठीक है, राजा काम बाद में करते हैं, अभी डिवोटी की तरह करते हैं, ठीक है, बीइंग अ डिवोटी, या मानो महाराज या कोई भी है ना, आते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो इससे क्या प्रकट पा रहा है? मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई। तो जैसे प्रभु ने कहा कि इससे एक तरह से हमारा डिजायर हम अगर है कि हमें रेस्पेक्ट मिलना, और वो डिजायर है और वो नहीं मिला तो एंगर उत्पन्न होगा, ठीक है, और यही एक तरह से हम देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और टेक्निकली हम उसको डिटेल्स में जाते हैं कि कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे कैसे वो एंगर किस तरह से एग्जिबिट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन को एंगर आएगा तो उठा के मार देगा तुरंत, है ना, लेकिन डिवोटीज के बीच में या हम लोग के बीच में जो हम छुपाने का कोशिश करते हैं, एंगर नहीं है, एंड फिर हाउ इट गेट्स चैनलाइज्ड, है ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, और हाउ दिस एंगर आल्सो गेट्स जनरेटेड ग्रेजुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखे तो सबसे पहले दक्ष बोलने से पहले उनको समझ में आ रहा है कि मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, है ना, वो हर कोई यहाँ पे कोई फूलिश है नहीं, है ना, दे आर ऑल ग्रेट सेजेस, तो वो सब समझ जाएंगे कि मैं उनकी प्रति ईर्ष्या के कारण ही बोल रहा हूँ, है ना, तो इसलिए कि वो मेरे को रिजेक्ट ना कर दे इस बात कहने से, हाँ, उसका भी चिंता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप, मैं जो कह रहा हूँ आई एम इन फुल नॉलेज, एनवी क्या होता है, ये क्या होता है, तो मैं आउट ऑफ इग्नोरेंस या आउट ऑफ एनवी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक शिक्षा देने के लिए कह रहा हूँ, जैसे प्रहलाद चंद्रू ने कहा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, इस तरह से ये प्रकट पा रहा है, लेकिन इसको कहने से तो कभी कभी यहाँ पे जैसे वहां पे ग्रेट सेजेस थे, तो हम भी जब डिवोटीज के बीच में आते हैं, है? क्लासेस में, मीटिंग में, तो वी नो दैट ऑल आर डिवोटीज, सब जानते हैं, एक एक चीज, सटल चीज जानते हैं, एंगर कैसे प्रकट पाता है, किस तरह से डिजायर प्रकट पाता है। तो मैं जो कह रहा हूं उस कहना जो है वो उससे मेरा फुलिशनेस ही प्रकट पाएगा या मेरा विद्वत्ता प्रकट पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सारे डिवोटीज हैं वो कैच कर लेते हैं, तो वो जो ये कह रहे थे तो वो कह के अपने आप को जस्टिफाई थोड़ी कर पा रहे थे, एवरीवन वाज कुछ क्लियरली नो कि वो क्यों कह रहे थे, नहीं, और वो पहले अपने आप को और जस्टिफाई जब कर रहे थे तो और जस्टिफिकेशन, मतलब उनकी नहीं, ऐसे हमारा साथ भी जो होता है, तो जब हम अपने आप को और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो गलत कर रहा हूँ, बोलने वाला हूँ, वो एक्चुअली गलत नहीं है, वो एक्चुअली सही है, तो वी साउंड मोर फुलिश, कि हमें ये नॉलेज भी नहीं है बाकी डिवोटीज क्या सोचेंगे, है ना, और व्हाट इज एटिकेट, है कि नहीं। तो इसीलिए भक्तों की जब बीच में होते हैं तो सामने आ जाता है हमारा जो भी क्वालिटीज सामने आ जाता है ना। एंड इट्स वेरी प्यूरिफाइंग, इसलिए भक्तों के बीच में कोई भी सर्विस करने दो, कोई भी कुछ, तुरंत सामने आ जाता है कि हमारा कमियां क्या है। आपको आप छुपा नहीं सकते, कैसे भी छुपाने का कोशिश कीजिए आ जाएगा सामने, है ना। आप मैं आपको जस्टिफाई करने जाओगे तो यू विल बी साउंडिंग मोर फुलिश, तो जस्टिफिकेशन वाला तो बात ही नहीं है, है ना, उस बात ही नहीं है। वो प्रभुपाद की लीला में तुम्हें आप देखोगे प्रभुपाद के सामने कोई भी जाता है अगर जस्टिफाई करे तो प्रभुपाद यूज्ड टू बी मोर एंग्री, है ना। तो जस्टिफिकेशन वाला जो है ना, और वो हमारा टेंडेंसी है, हम कंडीशन ऐसे ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या, हमें भक्तों के बीच में भी आना है, ऑल आर ऑल सीनियर डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज, और हमारा अंदर कमियां है वो पकड़ पा जाता आ जाता है सामने, और एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। हाँ, सॉल्यूशन क्या है, हम यहाँ से भाग जाए, नहीं, आपने आपको एलिवेट करना, हमें एलिवेट करना, बी हम्बल एंड एलिवेट आवरसेल्फ, एलिवेट आवरसेल्फ, है ना, ठीक है। और एक जो प्रैक्टिकल है चीज है, वाच वेगम, अगर आ रहा है आ भी आयंगर बोलने का मन भी कर रहा है, वाच वेगम कर लो अभी के लिए, दिस नॉट राइट टाइम टू स्पीक, चुप, जिस काम से आया कौन सा सेक्रीफाइस करना है क्या करना है, ओके, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दैट, बाद में देखेंगे इसको। What is my priority? मैं इतना दूर से आया या वो सब चीज के लिए आया, अभी कुछ सेक्रीफाइस, इतने सारे लोग बैठे हुए उनकी भी टाइम है, सबकी चीज, हम आए कुछ चीज को करने के लिए। यहाँ पे एक इंसिडेंस हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस, दिस वेरी पर्सनल इंसिडेंस, ठीक है। इज इट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, स्टार्टिंग इसी से ही होना चाहिए, और इट कैन वेट, है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, लेट मी, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मेटेरियल वर्ल्ड में भी कभी ऐसा हो जाता है, कभी मान लो ऑफिस में भी ऐसे झगड़ा हो जाता है, ऑफिस में मान लो मीटिंग में बैठे हैं, किसी कॉन कॉल हो रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बोलते ओके, वहां पे सेल्फ कंट्रोल करते हैं, लेट मी फिनिश इट, क्लाइंट बैठे हुए हैं वो करें, पहले मैं फिनिश करूँ, जो भी इंसल्ट हुआ जो भी चीज है आई विल टेक केयर ऑफ इट लेटर, ठीक है। पहले उस चीज को, जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज को कंप्लीट करें। जैसे मान लो आप क्लास पे बैठे हो, आपको क्लास देना है, स्टूडेंट्स बैठे हुए आपको क्लास देना है, उसके बीच में कोई आके कुछ बोल के चला गया या किसी स्टूडेंट ने कुछ बोल के चला गया, हाँ, आप एकदम एजिटेट हो गए, बोला आज के लिए क्लास स्टॉप, हाँ, ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि उसके साथ आपका झगड़ा हो गया तो सीन बोल सकते हैं, बोजी हम बाद में बात करेंगे, कितना भी हो गया क्लास को देखते हुए बाकी और भी डिवोटीज आए हैं उनकी भी टाइम है, दे आर इंटरेस्टेड, लेट मी फर्स्ट फिनिश, उसके लिए रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। इम्पोर्टेंस किस चीज का है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या वेट, ऑल सारे चीज जो है वो सेकेंडरी है, है ना। पर्सनल एजिटेशन, पर्सनल चीज जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सीखने को मिलता है वहां से कि सो स्ट्रॉन्ग, और जितना हमें पोजीशन में ऊपर होते हैं उतना ही ज्यादा ये चीज और स्ट्रॉन्ग, समझे अमृत लीला को, हाँ। तो आगे जाके आप लोगों को बहुत बड़े बड़े पोजीशन मिलने वाला है, है ना, और हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, हाँ, आप हम सबके जीवन में आ सकता है, आप सबके जीवन में आ सकता है, और उससे याद रखिए ये सब चीज, है ना, हमें याद रखना है, भूल जाते हैं एक्चुअली, याद रखना, ठीक है। तो तो इस तरह से फिर हमारा फुलिशनेस प्रकट में आता है। अगर हम ज्यादा होशियारी करेंगे तो फुलिशनेस प्रकट में आएगा।
सीनियर लोग पहचान लेते हैं, मतलब कितना छुपाने की
कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो हमारा इससे और भी कुछ पता चलता है कि वी आर, हम कैसे बीमारी से वो है अफेक्टेड है। इससे वो नहीं, हम एक दूसरे दक्ष जी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पर ये डिस्कस करें, ये जो हाँ प्राइड है या ये जो फॉल्स ईगो है, वी ऑल सब जानते हैं कि हम फॉल्स ईगो से कैसे अफेक्टेड है, हम कैसे बीमार हैं फॉल्स ईगो से। ठीक है, प्राइड से, एनवी से हम कैसे बीमार हैं, पर उसकी इंटेंसिटी कितना है वो नहीं जानते हम इतना ज्यादा। किसी को ये बीमार है फिर पता चला किसी ने मान लो कभी सुना ही नहीं कैंसर क्या, कैंसर ओके कैंसर हुआ ठीक है, लेकिन उसको सुनेगा कि कैंसर क्या है या ऐसे बीमारी वो कितना डेंजरस है, ड्रेडफुल है, तब उस चीज को फाइट करने के लिए भी वो उसके पास उतना प्रयास करेगा कि इसको इतना लाइटली नहीं लेगा। तो उसी तरह हमारा जो एक एक चीज, अभी थोड़ी देर पहले हमने लस्ट का बात किया, अभी यहाँ पे ईगो और एनवी का बात आ रही है, वो तो उससे भी एक लेवल आगे, तो वो कितना ड्रेडफुल है, कितना शक्तिशाली है, उसको हमें थोड़ा सा एस्टिमेट पता चलता है हाउ इट इज, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जब वो आए हैं तो सारे लोग खड़े हो गए, सब लोगों ने सम्मान दिया, ठीक है ना, यू कैन बी हैप्पी, अरे इतने लोगों ने मेरे को सम्मान दिया,
एक ने नहीं दिया
है ना। तो आप सोचिए कैसे फॉल्स ईगो काम करता है,
अगर सब नहीं उठते तो फिर भी कंट्रोल होगा।
आप समझ गया तो उस समय फिर क्या रहते हैं, हम अपने सेंसेस में रहते हैं कि हाँ हम सम्मान डिजर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते।
जिसमें त्रिदेव थे तो मैं तो विष्णु जी भी उठे हुए
हैं, भगवान तो ही नहीं है, बाद में आते हैं
यज्ञ में प्रकट होते हैं
ना। तो है तो हम ये चीज देखो कि कैसे इंस्टेंटली, इसके लिए महीना नहीं लगता है कि हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, इंस्टेंटली आ जाता है कि आप मानो सोच का है कि मैं कुछ नहीं डिजर्व करता, मैं इस पृथ्वी में सबसे लॉयस्ट हूँ और सिंफुल हूँ, भगवान अगर मुझे कुछ छोटा सा कुछ खाने के लिए कोई जगह दे दे, कोई ठीक है, आई एम हैप्पी। जैसे ही रूम में आए हुए सब खड़े हो गए, ग्लोरियस करने लगे, एक मोमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके मन में आ जाएगा, आई डिजर्व, आई हैव डन सो मेनी सर्विसेज रियली। और विश्वनाथ प्रभु ने आपको मान लो डांट दिया, पूजा आपने चाबी कहाँ रख दिया, आपने सुना नहीं इतने डिवोटीज ने मेरे को किया, मैंने कितना सेवा किया, और आप हमेशा डांटते रहते हैं, आप मैंने गुण को कभी देखा ही नहीं। उस दिन एक मोमेंट माइंड आपको इतना कुछ सिखा देगा, हमें बोल देगा कि हम कहाँ क्या कॉन्शियसनेस था हमारा, हम सोच रहे थे हम विनम्र हैं, हम लोएस्ट ऑफ द लो है, और एक मोमेंट में हमने सोचने लगे कि हम तो ग्रेट, इसलिए हमारा पोजीशन जो है अभी अनस्टेबल है ना? वो हम लेकिन जो आचार्यस है दे आर ऑल ऑलवेज दे नो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, इसलिए दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर ऑब्लिवियस ऑफ कौन रेस्पेक्ट कर रहा है कौन रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दे आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना। तो ये चीज इतना पावरफुल है ना, एक एक मोमेंट में आ जाते हैं।
ये मैसेज
से सोचू कि मैं डिजर्व करता नहीं, तो फिर एक कंडीशन कभी आएगा इंसान?
बिल्कुल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन हमें समझ में आ गया कि आई एक्चुअली डोंट डिजर्व एनीथिंग, किसी का रेस्पेक्ट मैं डिजर्व नहीं करता, है ना, वो कभी नहीं आएगा, इट विल नॉट, आई डोंट नॉट, तो आप कोई अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है विल फील थैंकफुल कि प्रोजेक्ट नहीं किया, थैंकफुल, और जिन्होंने किया विल फील एम्बेरेस्ड कि क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो है अननोन, ही डजंट नो माय पोजीशन दैट आई एम सो सिनफुल, देयरफॉर ही इज डूइंग इट. सो वी शुड ट्राई टू रेसिप्रोकेट, रादर रेस्पेक्ट देम, रिटर्न इट internally, should not be known this way. Position is
so, ये real ego तो artificially develop नहीं कर सकते ना, कि I don't deserve anything.
हाँ नहीं, artificially नहीं कर सकते, तो लेकिन करना है, मतलब real ही करना है, real quality भी नम्रता develop करनी है, तो उसके लिए we have to chant, artificially नहीं कर सकते. We have to practice. And come to that state.
मुझे practice तो बोलिए artificial ही हो रही होगी ना? हाँ हाँ. जो practice हो रही है वो तो artificial ही हो रही है.
नहीं, practice तो process है, पर उस practice को कितना intensity के साथ practice कर रहे हैं, है ना? वो matter करता है. आप ये हम सीख रहे क्यों? हम पढ़ रहे हैं क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि practice को हमें कितना sincerely करना है, ताकि मैं ये result पहुँच सके. जैसे हम कह रहे थे ना कि अगर कोई बीमारी पता चल जाए उसका, वो बीमारी को डॉक्टर के पास मिलने के लिए वो कितना सिंसियरली जाएगा, उस दवाई को कितना सिंसियरली लेगा, जब उसको पता चलेगा तब वो करेगा, उसकी सिंसियरिटी प्रकट आएगा उसमें. लेकिन कोई अगर उसको नहीं जानता है, वो कोई बात नहीं है ऐसे, वो उसका वो रहेगा, सिंसियरिटी उतना नहीं आ पाएगा. तो इसीलिए जब वो करेगा भक्ति का प्रोसेस, तो इतना सिंसियरिटी की करेंगे कि हमें इसको करना है, उस स्टेज पे जाना है. इट्स नॉट सो ईजी, डिफिकल्ट प्रोसेस भी करना है, कृष्ण की मर्सी भी वो करना है, प्रे करते रहना. तो जब हम प्रे करेंगे, उसे जेन्युइनली प्रे करेंगे कि हमें वो चाहिए, ये संभव नहीं है आपकी मर्सी बिना, वो जेन्युइननेस आएगा धीरे धीरे, है ना? अदरवाइज हम अफेक्टेड रहेंगे उसी से, और विल साउंड फुलिश, एक्ट फुलिश, एंड भक्ति कर रहे हैं, जीवन बीतते चला गया. And we feel happy कि अरे इतना अच्छा position भी हो गया, इतना devotees भी मुझे वो कर रहे हैं, है ना? And we feel our life is successful, है ना? सार्थक जीवन, सार्थक बताया महाराज ने, सार्थक होगी मेरा जीवन, पर हमने अंदर तो देखा नहीं, अंदर कहाँ तक है, क्या है, ठीक है? तो
दक्ष प्रजापति शिव जी को सिर्फ अपना दामादी को मानते थे, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी के सीनियर संत से एक हैं.
वही तो कह रहे हैं ना कि जब भी पॉलिसी को आ जाता है तो आप भूल जाते हैं, आपने इंस्टीट्यूशन पोजीशन भूल जाते हैं, दूसरी की पोजीशन भी भूल जाते हैं, दूसरी की पोजीशन भी भूल जाते.
दक्ष से शिव जी जन्म वाइज ज्येष्ठ थे क्या, बड़े थे जन्म से?
तो हाँ, है ना, आप भूल जाते तुरंत, आपके माइंड में ये सब आएगा, अरे वो कौन है, पहचान को कौन है, मैं तो इतना बड़ा हो गया, भूल जाओगे वो कब आए, है ना, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, है ना, सब भूल जाओगे, माइंड सब गायब हो जाएगा, है ना. अरे प्रभु जी ने दिया था प्रेजेंटेशन, वो तो अच्छा नहीं था, मैंने दिया था वो तो बहुत अच्छा था. हाँ प्रभु जी है, वो आए पहले तो क्या हुआ, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया. तो अमित जी से कहा ना, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पॉलिसी को हमें वो ले जाएगा उस पोजीशन में, पफ्ड अप, प्रभु जी प्रभुपाद कहते पफ्ड अप हो जाता, ठीक है? तो हम ज्यादा नहीं करते और आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, हाँ हम सोच सकते हैं, वहां पे वो बता रहे हैं कि ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो है काफी कर्ज भी दिया शिव जी को, है ना, और वो कर्ष जो है उन्होंने क्या दिया शिव जी को, शिव जी को ये बोला है कि आगे से कोई भी यज्ञ में सारे देवी देवता भाग लेंगे लेकिन शिव जी को कोई नहीं देगा, है ना? हाँ, ये तो एनवी में क्या होता है, है ना? जब भी हमें ऐसा होता है तो हम सोचते क्या है कि हमें प्रसन्नता होती है, दूसरे को अगर नुकसान पहुंच जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें खुशी से है प्रसन्नता नहीं होती है। तो आपने स्टोरी सुना होगा, है ना, जो बताते हैं कि है उन्होंने बोला कि आपको हाँ क्या चीज चाहिए, जो वो एक एक व्यक्ति थे जो परस से हमेशा जलते थे कि उसको ज्यादा हो जा रहा है, उसको ज्यादा वो हो जा रहा है ना, मेरे को नहीं हो रहा है, मैं मेहनत करता हूँ, वो तो कम मेहनत करते हैं, उसको बहुत जल्दी वो हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो सोचा भगवान से मिलेगा मुझे कुछ, बहुत प्रयास किया भगवान को, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या मांगना है मांगो, मैं आपका वर पूरा करूंगा लेकिन जो भी आपको मांग दूंगा उसका डबल उसको दूंगा मैं। अब उसने भी सोचा मैंने मेहनत करके भगवान को बुलाया मेरे को देंगे, उनको बिना मेहनत के उनको डबल देंगे तो वो सोच रहे क्या किया जाए, मुझे क्या चाहिए जो उनका डबल हो जाए। तो बोले कि मैं एक आंख मेरा खराब हो जाए तो क्या है उसका दुआ खराब हो जाएगा, बहुत अच्छा आनंद आएगा तो ऐसे ईर्ष्या होती है, क्या हमारा नुकसान करता है ईर्ष्या, है ना? और हम सब उससे सफर कर रहे हैं हर कोई। तो जब बोलते ना संसार वासना कभी तुच्छ होबे, आर कबे निताई चादे करुणा हुई भी संसार वासना मोर को। तो संसार वासना सिर्फ फिजिकल संसार फैमिली नहीं, ये सब मेंटेलिटी, ये सब संसार वासना कि उसका कम हो जाए मेरा ज्यादा हो जाए, उसको नुकसान हो जाए उसको कष्ट मिले, दूसरा लोग उसको सम्मान कम दे मेरे को ज्यादा दे, ये सब कपटता और छल और ये सब संसार वासना। वी ऑल आर सफरिंग इस संसार वासना से। तो कभी तुच्छ होबे इस संसार वासना से, कब हम मुक्त होंगे, है ना? तो ओनली बाय मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु वी कैन ट्राई टू नीताई गौरा, वी नीड मर्सी, है ना? ठीक है, तो अदरवाइज विल सफर, ये एक्चुअली हम खुद ही सफर करते हैं इस तरह से। तो वो फिर आगे बताते हैं कि शिव जी को वो नहीं मिलेगा, है ना? क्या नहीं मिलेगा यज्ञ में, शान नहीं मिलेगा। आप प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं उसमें तात्पर्य, आप प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज ए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, कि एक्चुअली उन्होंने तो शाप दिया, कर्ज दिया, लेकिन एक्चुअली ये ब्लेसिंग्स था, भगवान की ब्लेसिंग्स उनके माध्यम से आया, कर्ज के माध्यम से। उन्होंने सोचा मैंने तो नुकसान पहुंचाया लेकिन एक्चुअली वो शिव जी के लिए अच्छा होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे डेमिगॉड सारे मेटेरियलिस्टिक है, हाँ मेटेरियलिस्टिक मतलब वो मिश्र भक्ति है, तो शिव जी के लिए उनकी एसोसिएशन बेनिफिशियल नहीं है इसलिए शिव जी शुड अवॉइड देयर एसोसिएशन। लेकिन यज्ञ में होता है तो उनको जाना पड़ता है, उनकी एसोसिएशन लेना पड़ता है, सो बेटर ही सेव्स हिज टाइम एंड सर्व्स कृष्णा नाइसली। तो वो कहते हैं कि गौर किशोर दास जी महाराज का एग्जांपल देते हैं कि he is not interested to meet with materialistic devotees, इसलिए वो बाथरूम में जाके चैंटिंग करते थे कि मेटलिस्टिक लोगों से वो दूर रहना है। तो इस तरह से ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। तो अगर कोई मान लीजिए कर्ज दे भी रहा है आपको हमको, तो समझ सकते हैं हमें उसमें एजिटेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अरे कर्ज दे दिया उन्होंने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहते हैं कि कोई हम आपका बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता अनलेस अनटिल वी हार्म आवर सेल्फ, है ना, नो वन कैन हार्म। तो हम कब हार्म अपने आप को करते हैं, जैसे किसी ने कर्ज दे दिया हम उल्टा उसको कर्ज दे दिया तो ही हमने अपने आप को हार्म कर दिया, है ना, कहां एजिटेट हो गए तुम। तो यहाँ पे जो है और इसमें इस तरह से कभी कभी कर्ज मिल जाता है हम लोग को भी, कोई अपराध की कहानी कोई, लेकिन जब भक्त होते हैं तो भगवान उस कर्ज के माध्यम से भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, है ना। तो जब तक एज लॉन्ग एज हम कृष्ण की सर्विस में हैं, कोई डिवोटी नाराज होके कुछ बोल दे हमको या कोई कुछ कर दे, कुछ भी कर, हर चीज में कृष्ण की कुछ ना कुछ मर्सी आएगा, है ना। तो कभी कभी डिवोटी सोचते हैं मेरा लाइफ में इतना कष्ट हुआ है ना, तो बाकी डिवोटी देखो कितना अच्छा से कर रहे हैं, उन्होंने देखो जो है उनका जॉब देखो कितना अच्छा से चल रहा है, मेरा जॉब में हमेशा प्रॉब्लम आ रही है, मेरा हम दोनों एक ही साथ किया लेकिन उनका लग गया जॉब, मेरा नहीं लगा, कुछ इस तरह से चलता रहता है ना। और डिवोटी कंपेयर भी करते हैं कि देखो उन्होंने भी तो सर्व कर रहे हैं और मैं भी सर्व कर रहा हूँ लेकिन मेरा लाइफ में इतना आ रहा है प्रॉब्लम। तो हम समझ सकते हैं कि कभी अगर हमारा कम भी हो रहा है तो कुछ कर्ज हो रहा होगा, कुछ प्लान हो रहा होगा और भगवान की मर्जी है। जब चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे, कुछ ब्राह्मण आना चाह रहे थे, उनको बोला कि कोई नहीं आ सकते, है ना, ऐसे कोई हर कोई नहीं आ सकते, तो एक ब्राह्मण क्रोधित हो गए और होके महाप्रभु को श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ आप मेरे को अलाउ नहीं करते हो आने में, कि आपको फैमिली लाइफ में कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना, फैमिली का सुख नहीं मिलेगा। महाप्रभु बहुत खुश हो गए कि थैंक यू ये कर सकता। तो इस तरह से ये चीज ब्लेसिंग्स। तो कभी कभी कोई हो सकता है सोच सकते हैं कि मेरा लाइफ में काफी परेशानी है, हाँ, लेकिन मैंने क्या ऐसे पाप किया कि मेरे में इतना परेशानी है, किसने कोई श्राप दे दिया मेरे को, लेकिन ये ब्लेसिंग्स है, हर स्थिति में ब्लेसिंग्स है, है ना, कि ऐसे होने से ही हो सकता है टॉलरेंस आएगा, ऐसे होने से ही हो सकता है वैराग्य आएगा, है ना। कई डिवोटी हम देखते हैं जैसे गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, हर कोई सपना लेके जाता है कि मेरा गृहस्थ लाइफ ऐसा होगा कि मेरी वाइफ भी डिवोटी होंगे, हम दोनों एक साथ दीक्षा लेंगे, हम दोनों ऐसे करेंगे, सब मिलके ऐसे अच्छा से भक्ति करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, सबका अलग अलग जो है डिफिकल्टी आती है, सबको अलग अलग। तो सोचते मेरे तो वो तो इतना अच्छा से कर रहे हैं, मैं इतना खराब कैसे, लेकिन खराब नहीं है ये, अच्छा है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज।
डिसगाइज
समझ पा रहे हो, नहीं
जितना भी सर्कमस्टेंस आता है डिवोटी की लाइफ में वो सभी एक तरीके से बेनिफिशियल है भक्ति में, अगर राइट पर्सपेक्टिव से उसको।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एज लॉन्ग एज हम कृष्ण की शेल्टर में हैं, कृष्ण की सहाय सेवा में लगे हैं और इतना फेथ है कि हर चीज कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं और हम कृष्ण के ऊपर पूरा तरह से निर्भर हैं, जो इच्छा कृष्ण का है वो, तो कृष्ण हमेशा कोई भी कितना भी हो सकता है हमारे पाप पास्ट कार्य के कारण हमें कष्ट आ रहा है, लेकिन कृष्ण ऐसे सिचुएशन में कष्ट देंगे जिससे हमारे भक्ति में उन्नति हो सके,
सारे सब कुछ भी सर्कमस्टेंस है वो
उसमें से कुछ अलग है, सारे चीज कृष्ण के ही निर्देशन में होती है, निर्देशन में।
तो ये भाव तो तभी आएगा ना जब हम थोड़ा शुद्ध हो गए होंगे अंदर से हमारी, ऐसे तो हम कहाँ सोच पाते हैं कि कृष्ण नहीं दिया, हम तो ये कहते हैं भाई हमारे साथ ही हो रहा है, दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है,
आप दीक्षा ले चुके हो तो आपका शुद्ध हो ही गया है कि नहीं, आप भी सब शुद्ध भक्त है सारे डिवोटी के। तो अगर नहीं है तो क्या करें, हम अपने आप को एलिवेट करें, हम जाने कि हमें एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, है ना, आप किससे छुपाए, है ना, हाँ अपने आप से ही कोई एलिवेट करें, ठीक है। सो वी ऑल आर एक्सपेक्टेड कि हम ऐसे हो, और ये फैक्ट है, यहाँ पे बता रहे हैं शिव जी उससे, इसलिए इस कार्ड से शिव जी अफेक्टेड नहीं हुआ। क्या बोला आपने, हाँ आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए, दिखा दूंगा आपको कौन क्या करता है मेरे को, तुमने कुछ नहीं कहा, आप देखोगे शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा, जस्ट हाँ हाँ साइलेंटली वो उसको सुन रहे, कुछ भी नहीं बोला। ठीक है,
तो बाद में वीरभद्र को क्यों भेजे?
हाँ,
बाद में वीरभद्र को क्यों भेजे?
क्या भेजा?
बाद में वीरभद्र को भेजा था।
हाँ, वो बाद में आएगा। अभी अभी इस सभा में उन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन इस सभा में फिर शिव जी जो है, हाँ जो है वो सभा छोड़ के, हाँ उससे पहले शिव जी का जो डिसाइपल है नंदीश्वर, वो जो है हाँ उनको सहन नहीं हुआ है ना, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने शाप देना शुरू किया कि आपने ऐसे बोला, अब जो ब्राह्मण जो सारे उनकी दक्ष के पक्ष में है उनका ऐसे ऐसे हो, तो उन्होंने चार पांच कर्ष दिया। तो
आइडियल बिहेवियर क्या था उसमें नंदी के लिए?
जो उन्होंने कहा है ना, अब मुझे पता नहीं हुआ अब आइडियल क्या है ना, तो
बता रहे
आइडियल उनके लिए तो यही आप मान सकते, शिव जी का है डिसाइपल है तो उनको अपनी अगेंस्ट में गुरु को डिफेंड करना ही चाहिए, है ना, गुरु को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो आप समझ रहे मेन पॉइंट, तो हमें ऑफकोर्स हमें मेन पॉइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर हम 1% भी अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लें वो हमारे लिए बहुत बेटर है, एंड वो सारी चीज में ऑफकोर्स हमें सब चीज में करना चाहिए कि हमें इंप्लीमेंट भी करते चले जाना है। वी शुड नॉट हैव दिस क्लास फॉर क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट, है ना, इट शुड नॉट बी एंटरटेनमेंट क्लास।
ये भाव कभी कभी हो जाता है, लोगों के साथ भी होना चाहिए कि हॉलीवुड के साथ, ये जो भाव है
भाव ना
मैटेरियलिस्टिक लोगों के साथ
आइडियली, तो हाँ मैटेरियलिस्टिक साइड में आपको अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो आप वहां पे जाके नहीं बोलते आपने क्यों ये मेरे को इंसल्ट किया, इट इज अ फुलिशनेस, है ना, आप सोचते हो क्या उन्होंने इंसल्ट किया, कुछ तो मैंने किया होगा जिसके कारण उनकी प्रति मेरा प्रति उनका फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्या किया पहले उसको जज करते हैं, सोचते हैं कि क्या मैंने किया और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, है ना। उन्होंने अगर कुछ कहा तो कुछ तो सच होगा, अगर नहीं भी है तो भी हम सोच सकते हैं और सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा।
वहाँ पे भी यही सोचा ये कृष्णा की वजह से ऐसा मिल रहा है, मतलब हमें कुछ शिक्षा मिल रही है,
कुछ से सोचेंगे तो क्या कष्ट देगा हमें
ना। तो
जी जैसे केस है तो उसमें यदि उसकी कुछ इंसल्ट कर रहा है तो बात हो
हम लोग वो बताते हैं सेल्फ डिफेंड करना चाहिए, हमें अपने शरीर को रक्षा के लिए हम रक्षा कर सकते हैं उस समय,
तो उसको मार भी सकते हैं।
हाँ ठीक है,
हम मतलब इस समय देखते हैं कि अगर कोई हमसे नाराज हो तो इसलिए हमारा कुछ गलती होगा, हमारी वजह से शिवजी ने हमें जाए, तो बेसिकली इसमें मतलब कि मतलब ये चीज़ आइडियल आइडियल है कि जैसे देखना चाहिए कि सामने वाला किस वजह से, अगर उसको बाल मांगना हो सकता है कि और खराब करे और जस्ट इंटरनली इसको करेगी मतलब प्रार्थना गया उसको मेरी वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि मेरा प्रेजेंस है एटलीस्ट,
अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है, उस मोमेंट में आप समझ सकते हो कि क्या चीज सही है। जैसे मान लो ऐसे केस हो जाए, यहाँ पे क्लास होने लगा, एक डिवोटी को बोले क्लास देने के लिए, वो आए अचानक से आपको कोई चीज देखा उनको है ना गुस्सा आ गया, और होता ही है वैसे क्लास में ना, वो कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है पर उस टॉपिक से किसी डिवोटी का प्रहार होता ही होता है ना, लगभग सोचते वो डिवोटी है ना ये नहीं किया, अब मेरे को ये टॉपिक मिल गया अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उनकी पॉइंट्स आ रहे हैं उसी में डाल दूंगा। तो मान लो किसी डिवोटी ने आपका अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया तो क्या कर सकते हो, डिपेंड करता है ना, यू अंडरस्टैंड किसी सिचुएशन कैसा हो, मान लो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और डिवोटी बोलने लगे कि नहीं नहीं ना कृष्ण प्रभु ऐसे नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं इस तरह, तो उस समय अगर आप जस्ट उनको जो बोल रहे हैं आप अगर सिंपली बोल दो कि नहीं वो जो बोल रहे थोड़ा सा सही भी है ना, तो सारी सिचुएशन देखोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारा आपका आपस में ये दैट इंटेलिजेंस विल कम टू यू कि क्या मुझे बोलना चाहिए उससे, ठीक है। लेकिन हम उससे यहाँ पे नहीं कर सकते कि शिव जी को ये करना चाहिए था या उनको नंदीश्वर को ये करना चाहिए था, वी आर नॉट जजिंग दोस थिंग्स। तो लेसन ये है, एक तो टॉलरेट करने, हम काउंटर एक्ट नहीं कर रहे कि आपने कर्ज दिया आपने ये किया तो मैं कैसे दे सकते, ठीक है। कितना भी उनके ऊपर बोल रहे हैं, कितना भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शिव जी वहाँ पे कुछ वो बोल रहे हैं।
मुझे एक ऐसा भी मतलब कि अगर टॉलरेट कर रहे हैं लेकिन गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं,
तो फिर भी टॉलरेट करना ज्यादा अच्छा, टॉलरेट करना ज्यादा अच्छा,
इफेक्ट तो तब भी हो रहा है ना, लेकिन इफेक्टिव तो
इफेक्ट तो होंगे लेकिन एक स्टेप नीचे कि वो ऑफेंस नहीं कर रहा है, ठीक है।
लेकिन ऑफेंस के लिए तो भी कहा जाता है मन से भी अपराध लग जाता है, मन से भी सोचना,
हाँ लेकिन मन से कम लगता है, उससे ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो हम आगे चले है ना, तो टाइम को देखते हुए आप लोग एसेंस को समझिए, ठीक है। तो फिर नंदीश्वर ने काफी सारे वो कर्ज दिया है ना, वो बोल रहे हैं जो है वो लोग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से बेरेफ्ट हो जाएंगे, मतलब दिव्य ज्ञान नहीं रहेगा उनका, पढ़ेंगे बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन एसेंस ज्ञान जो है नहीं आएगा। फिर दे विल बी अटैच टू फ्रूटिव एक्टिविटीज, वो सिर्फ फ्रूटिव एक्टिविटी करेंगे, और दक्ष को जो है बकरे का सर मिलेगा, और ये लोग जो है सारे साइकिल ऑफ बर्थ में कंटिन्यू करेंगे, है ना, ऐसे वो बता रहे। उसके बाद फिर भृगु मुनि जो है वो दक्ष जी का तरफ से फिर वो खड़े हो गए कि आप हम सबको ऐसे कैसे कर्सिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो बोले जो भी शिव जी का फॉलोअर है वो सारे लंबे लंबे बाल रखेंगे और दे विल लीव ऑन वाइन एंड फ्लैश, तो इस तरह से उन्होंने भी। तो आप ये सब चीज हो रही है लेकिन आप देखो रूट कॉज क्या था, कर्सिंग में कोई अच्छा तो हो नहीं रहा है, एक दूसरे को बोल रहे हैं, इतना चीज हो गया सिर्फ एक चीज को कंट्रोल नहीं करने की वजह से, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे लाइफ में भी अगर हम लोग है ना कोई भी सिचुएशन को सबसे पहले, इसलिए भगवद गीता में भी जैसे भगवान कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ ये जो है ये सारे इंद्रियों में मन में और बुद्धि में रहता है, तो शुरू से ही आप क्या करो ट्राई टू कर्व देम, कि शुरू से ही, तो जब इस चीज को होने लगे उससे पहले ही आप उस चीज को वो कंट्रोल कर, तो ऐसे सिचुएशन हो गए। और इसलिए भक्तों के बीच में हम ऐसे बहुत कम देखते हैं जो बाहर कोई भी बातों बातों पे झगड़ा हो जाती है, बातों बातों पे ये हो जाता है, भक्तों की समाज में नहीं होती है। कितना भी कोई कुछ बोल दे कितना भी कुछ कर दे लेकिन भक्त लोग सहन कर दे, ठीक है। तो लेकिन हमें और समझना चाहिए, हो सकता है और कठिन स्थिति आ जाए हम ऐसे हो जाए, तो इसलिए हम लोगों को उसको ओपन, ठीक है। तो एक दूसरे के गलत चाहना, उसका ऐसा हो जाए उसका ऐसा हो जाए, ये भक्त कभी चाहते नहीं, भक्त हमेशा दूसरे का भला ही चाहते, वो चाहे हमारा खराब भी कर दें कोई बात नहीं लेकिन हमें उनका भला ही चाहते। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं कि आई एक कोट है उनका, आई विश द हाइस्ट गुड फॉर माई वर्स्ट एनिमी, ऐसे ही कुछ है कोट है, ये उसका हाइस्ट गुड चाहता हूँ। तो एक डिवोटी अगर हमारे कुछ भी मतलब किसी भी कारण से अगर हमारा मन में उस भक्तों के प्रति अच्छा नहीं भावना आया, हम मुझे दुख लगा या कुछ, फिर भी हम उनकी भलाई चाहें, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, फिर दक्ष का अपोजिशन जो है और आगे बढ़ता है, लेकिन शिव जी जो है उससे कोई ईर्ष्या भाव या कुछ ऐसा नहीं करते कि दक्ष का देखो मेरा पति अपराध करने के बाद भी उनका बड़ा प्रगति हो रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं, वो चीफ थे और भी उनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगे। तो एक समय फिर दक्ष का जो है घर में उन्होंने वो किया और एक यज्ञ का, अच्छा उसमें भी था कि जब सब लोग चले गए ऐसे करके शिव जी चले गए और फिर वो चले गए दक्ष भी चले गए, तो फिर सारे ब्राह्मणों मिलके वो सेक्रीफाइस उन्होंने कंटिन्यू किया जिस सेक्रीफाइस के लिए वहाँ पे आए थे। तो उसमें ही प्रभुपाद कहते हैं कि एटलीस्ट भगवान की जो कार्य है वो तो कंटिन्यू होना चाहिए, तो डिवोटीज ये नहीं बोले कि वो लोग चले गए तो हम भी छोड़ के चले जाए, तो सारे लोग मिलके एटलीस्ट उसको कंटिन्यू किए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिवोटीज जो लीडर है या जो है वो समहाउ कुछ मतभेद हो गया कुछ हो गया, लेकिन हमारा जो सर्विस है जो भगवान की प्रचार है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो आगे जाके जब दक्ष का घर में फिर एक यज्ञ करते हैं वो, और उस यज्ञ में सबको बुलाते हैं लेकिन सती जी को नहीं बुलाते हैं और शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो वहाँ पे सती जी जो है वो देखती हैं, उनको पता कैसे चलता है, वो देखते हैं कि सब लोग जा रहे हैं उनके पिता के उसमें, और समहाउ अदर उनको मैसेज मिला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो जो है और जब देखिए कि सब लोग जा रहे हैं उनके पिता के ऐसे ऐसे सच के अपने हस्बैंड के साथ, तो वो उनके मन में इच्छा है कि मैं भी जाऊं। तो वो शिव जी के पास आए और बोले कि मैं जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने उनको कहा कि आपको तो इनविटेशन तो नहीं आया, तो कहती हैं कि फ्रेंड्स के घर में या पिता के घर में बिना इनविटेशन भी जा सकते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ इनविटेशन बिना इनविटेशन जा सकते जरूर, लेकिन अगर उनका घर में नहीं जा सकते जो आपको देख के खुश नहीं होंगे, ठीक है, तो आपके पिताजी का जो है, शिव जी बता रहे हैं कि उनके पास अभी संपत्ति है सब कुछ है, लेकिन उसके कारण जो है अभी वो एक्चुअली उसके कारण वो उनकी क्वालिटी वो प्राइड आ गया उनके, इसके कारण वो आपका आदर नहीं करेंगे। तो उसमें बता रहे उनके अंदर इतना कुछ यश है सब कुछ है सब अच्छा है, लेकिन प्राइड वो चीज प्राइड क्रिएट कर रहा है, इसलिए जो है वो चीज होते हुए भी क्या है आपके पिताजी का वहाँ पे आपको जाना सही नहीं। और उसमें फिर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे अच्छे गुण होते हैं, कहीं दक्ष के बहुत सारे अच्छे गुण थे, तो बताते हैं अच्छे गुण भी तब तक ही अच्छे गुण अगर वो चीज़ हमको पोल्यूट नहीं करें तो अदरवाइज अच्छे गुण होते हुए भी अगर हमारे अंदर हम पोल्यूटेड है तो अच्छे चीज भी जो होती है वो भी डेंजरस हो। जैसे बताते हैं कि सांप के ऊपर अगर एक मनी हो तो सिर्फ मनी होने से ही वो उसका डेंजर खत्म नहीं हो जाता है, उतना ही डेंजरस होता है
हमारे लिए।
ठीक है, तो उसी तरह उन्होंने समझा लेते
हैं। यहाँ पे और एक चीज वो है देखने के लिए मिलता है,
पहले कंप्लीट कर लो तो जी, हाँ पहले टाइम नहीं हो रहा है ना, है ना, बहुत सारी चीज होते हैं तो कंप्लीट कर लो। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप रहने दो, मेरा ख्याल से मेरा विचार से आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। तो सती जो है कुछ कह नहीं पाए और वो बहुत एक तरह से दुखी हो गए और इधर उधर चलने लगे, और प्रभुपाद कहते हैं कि वो लास्ट वीपन होता है ना रोमन का, तो क्या होता है लास्ट ओपन वीपन रोना, तो वो रोना शुरू कर दे। फिर शिव जी बोले आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जाओ अगर आपको लगता है ना, तो जाने लगे। तो वहाँ पे एक पर्पट है, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जो गृहस्थ डिवोटीज पढ़ सकते हैं उसको, तो उस दिन मैं पढ़ के सुना रहा था उनको, तो वो श्लोक है उसमें कि 4.3.9 उसमें 4.3.9 तो उसमें बताते हैं कि शिव जी जो है एक्चुअली सती जी को कुछ दे नहीं दिए हैं, है ना। तब तो सती जो है वो बोल रही हैं कि है, मैं वो गहना पहन के जाऊंगी, जाना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी ने दिया है। तो फिर प्रभुपाद ने बता दें कि है ना वो पिताजी ने दिया है, ऐसे क्यों बोला है उसने, क्योंकि शिव जी ने कुछ दिया ही। बहुत इंटरेस्टिंग 5 मिनट है, आप सुनिएगा, आप पढ़िएगा, है ना। और तो यद्यपि हस्बैंड को चाहिए देना चाहिए, लेकिन शिव जी उसमें कुछ आता नहीं उनको इस तरह से सोशल उसमें जाना और वाइफ को डेकोरेट करना, क्यों नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं शिव जी। तो इस तरह से बहुत सुंदर है पर और लेकिन बताएं कि लास्ट में बताए लेकिन शिव जी का इतना अच्छा क्वालिटी है, क्यों उन्होंने एटलीस्ट उस गहना लिया तो नहीं उनसे, लेकिन नष्ट तो नहीं कर दिया उनको। कई लोग होते हैं जो अपनी पत्नी का गहना लेके भेज देते हैं और फिर, लेकिन शिव जी उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या है या क्या देना चाहिए क्या नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, और उसने वो भगवान की सेवा में है। तो फिर सती जी को परमिशन दिया और वो गए, और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे जाने के बाद फिर जो है वो सोचे कि शिव जी का ग्लोरीस होगा, उनको स्वागत करेंगे, लेकिन वो ये नहीं, और उससे वो बहुत शिव जी का क्रिटिसिज्म सुन नहीं पाए। तो सती जो है पतिव्रता जो है वो जनरली उनकी क्वालिटीज होते हैं कि वो अपने हस्बैंड का दुख नहीं देख सकते, तो ये सब उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो जैसे हमने सुना था जयदेव गोस्वामी और पद्मावती का, जो पद्मावती से पूछे थे कि अगर आपको पता चल जाए कि जयदेव गोस्वामी का कुछ हो गया तो आप क्या करें, तो बोले सुन के ही वो शरीर छोड़ देंगे, रह नहीं सकते। तो उसमें वो बोले थे कि ऐसे कैसे बोल दिया, एक दिन टेस्ट करना चाहिए। तो किसी ने आके बोल दिया कि ऐसे ही उनका कुछ हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर बाद में फिर वो आए तो उसके बाद फिर जीवित हो गए। तो इस तरह से कहीं सतियों का वर्णन है। तो पति का बारे में वो नहीं, कष्ट नहीं सहन कर सकते। तो यहाँ पे सती जो है प्रभुपाद लिखते हैं पतिव्रता में से श्रेष्ठ है, पतिव्रता में टॉप में। तो सती ऐसे है कि पति के बारे में निंदा ही वो सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब सुना तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं रह सकता, वो सहन नहीं हो, तुमने कहा कि मैं शरीर छोड़ू, और फिर उन्होंने वहां पे शरीर छोड़ा। और फिर जो है शिव जी का जो वो थे वो बहुत क्रोध आया कि शिव जी का जो पत्नी है उनका ऐसे हो गया, आप उनसे आप उन्होंने उनका वह मारने लगे, दक्ष जी को करने लगे। फिर वहां पे दक्ष जी का जो है भृगु मुनि ने कुछ मंत्र उच्चारण किया, सब चले गए, कोई कुछ कर नहीं पाए, सबको भागना पड़ा। फिर उसके बाद फिर शिव जी ने, तब शिव जी ने देखा कि वो लोग ऐसे अत्याचार कर रहे हैं उनकी शिष्यों के प्रति, तो शिव जी ने एक असुर का जन्म दिया, उत्पन्न किया, और फिर वो जाके फिर वहाँ पे सबको उनका दक्ष जी का सर काट दिया और ऐसे ऐसे है ना किया। तो इतना पावरफुल थे। तो फिर उस समय फिर ब्रह्मा जी आए और शिव जी को बोले कि ये सेक्रीफाइस होना है तो आप मान जाओ, आप ही कुछ कर सकते हो, उसको वापस सही सिचुएशन में ला सकते हो। और शिव जी एक्सेप्ट कर लिए तुरंत, ठीक है, और फिर वो जाके आगे कंट्रोल हुआ। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ जो चीज हो गया वो तो नहीं हो सकता है, आप दक्ष जी का सर जल गया अब नहीं हो सकता है, तो बकरी का सर ही लगेगा, और जिनके जो है आग चला गया वो फिर ऐसे देखेंगे, जिनका ऐसे हो गया वैसे देखेंगे। तो इस तरह से संभाव वो हुआ और फिर यज्ञ पूरा हुआ। ठीक है, तो इट वॉज वेरी इंस्ट्रक्टिव हम सब के लिए और बहुत ही अच्छा। तो ध्रुव महाराज का तो टीचिंग आज तो कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, तो आज हम यहाँ पे ही विराम लेते हैं, लेवल 4 में जाएंगे अभी। तो आप लोग बस पढ़िए, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप पढ़ेंगे आप लोगों को सब समझ में आएगा कि कैसे हैं। पर ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं एक दूसरे के भक्तों के प्रति, हम कैसे है ना, हमारा अहंकार और ईर्ष्या किस तरह से रहता है, ये लास्ट मोमेंट तक रहता ही रहता है। हम लोग कितना भी और जितना ऊंचे पोजीशन में जाएंगे इतना और बढ़ता चला जाता है।
तो जैसे दक्ष वाला जो शिव जी के अंदर शिव जी का देख के जो गुस्सा हो गए, हो तो ये मुझे ऐसा लग रहा था फॉल्ट फाइंडिंग वाला भी है क्या?
हाँ, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग भी आप किसका फॉल्ट फाइंड करते हो जनरली बताएं?
सीनियर्स का, अक्सर जैसे सीनियर्स को देखते रहते हैं ना, सीनियर्स को रहे सभी सभी तो ऐसे सीनियर्स।
हाँ, तो जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में इतने सारे लोग हैं, उनका इतने सारे खराब गुण है, लेकिन आप नहीं फाइंड करते हो फॉल्ट, ठीक है ना,
कोई रिलेशन ही नहीं होता उनसे।
हाँ, रिलेशन ही नहीं होते हैं, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें फॉल्ट फाइंड करने का, ठीक है। तो हम इंटरेस्टेड होते हैं जो है स्पेसिफिकली, हाँ, जिनके साथ हमारा कुछ लड़ाई है या जिनके साथ कुछ ईर्ष्या है या जिनके साथ कुछ रिलेशन में कुछ। यहाँ पे अगर शिव जी ना हो, कोई और होता तो शायद दक्ष को इतना गुस्सा नहीं आता शायद। और ये सब चीज भी एक्चुअली वो रिलेशन में भी बहुत पहले से ही थोड़ा ग्रज होते चला जाता है। तो ग्रज जो है ये एकदम से हो सकता है, इतना क्रोध नहीं भी आता, वो पूरा पहले ही वाला सारे निकलते। आए बोले ना कि शिव जी का आंखें ऐसे है, वो मेरी बेटी की आंखें ऐसे हैं, वो मैं तो देना भी नहीं चाहता था, दक्ष ने वो ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए मैंने दिया था। तो वो ग्रजेज उनका पहले से चले आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और वो एक समय आया जो अब ये वाला चीज इग्नाइट कर दिया ये पूरा बस।
इसी तरह
हाँ, बिल्कुल। तो हमारा भी एक डिवोटी के साथ एक डिवोटी ग्रजेस रहता है, धीरे 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 वो ग्रजेस बढ़ता जाता है। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, तो मैंने बहुत देखा, आपने उस दिन भी ऐसे किया था, ऐसे सारे निकल आता। तो इसलिए ग्रजेस को रखना ही नहीं है, क्योंकि ग्रजेस रखेंगे तो प्रेम भाव का आता है, ग्रजेस होनी
नहीं।
ग्रज को दूर करो, कि ग्रज अपने आप को प्रचार करो कि ग्रज किस लिए है, क्या गलती किया उन्होंने, कुछ गलती तो नहीं किया, कि क्यों मैं सोच रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखोगे तो ग्रज नहीं रहेगा, कौन किसने आपका क्या बिगाड़ा,
अपने कॉन्सेप्ट से कंसेप्ट करके भी काफी चीज।
हाँ, लेकिन ग्रजेस तो होनी नहीं चाहिए। एक डिवोटी वो अपने हिसाब से जी रहा है, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, क्यों इतना परेशान है नहीं। तो धीरे धीरे ग्रजेस जो है,
ग्रजेस का हिंदी क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली।
ग्रजेस
द्वेष, ईर्ष्या,
ठीक है।
एक हम जैसे देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और भगवान भगवान फिर भी आते हैं, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं हमेशा, लेकिन हम समझने के लिए कहते हैं कि शिव जी का क्या आइडियल बिहेवियर होना चाहिए।
यहाँ पे बताते हैं शिव जी जो है वो एक्चुअली मेडिटेशन में थे, हो सकता है वो आके सम्मान कर भी देते, शिव जी को ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, हो सकता है सम्मान कर भी, लेकिन वो इतना मेडिटेशन, उनको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया। जैसे आप मान लो इतना जप कर रहे हो, मान लो आपने एकदम आँख बंद करके जप कर रहे हो, जैसे मोहनपुर निकल गया, आपने प्रणाम नहीं किया मान लो, तो आपसे ऑफेंस माना जाएगा क्या? नहीं ना, आपने बिल्कुल आँख बंद करके अभी कुछ देखा ही नहीं आपने, आपने मान लो देखा तो फिर नहीं किया तब तो एक बात, मतलब आपने देखा ही नहीं, आपने आग बंद करके कर रहे हो और साथ में से कोई निकाल के खेल चले गए, आपने ध्यान नहीं, और वो बोले अरे मेरे को देखा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे
लेकिन जैसे इसमें एक इंसिडेंट आता है कि जो रूप गोस्वामी जब चिंतन कर रहे थे उनकी लीलाओं का, और जब वहाँ से ऋषि गए और वो अपने ही उसमें थे, लेकिन उन्होंने सुन लिया ये मेरे को देखकर हंस रहे हैं, तो
तो वो तो फिर जो है अनजाने में होता ही है हमारा, हमसे भी होता है, लेकिन जाने होना वो ज्यादा खतरनाक है। तो अनजाने में अब हम उस स्टेज में मान लो चैंटिंग कर रहे हैं तो हम किसी को ऑफेंस नहीं कर, अगर हम ऐसे अगर हो जाए गलत कि हम चैंटिंग में हम जो है लीला दर्शन कर रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और कोई ऐसे ही डिवोटी आए जिनका मुस्कुरा हाँ मतलब जिनका सही नहीं था, तो वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना, और उनको देख के उनको लगे कि हंस रहे हैं हम लोग, तो वो ऐसा होता है, अनजाने में होते हैं, अनजाने में हम चलते हैं मान लो चीटी पड़ जाता है हमारे पाव से हो जाता है, तो इसलिए जब हम ये नहीं बोल सकते कि हमने किसी को ऑफेंस नहीं किया तो मतलब नहीं किया, इसलिए जब प्रणाम करते हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये भी क्षमा मांगे भगवान से जो अनजाने से भी हो गए, तो डिवोटी से जब हम क्षमा मांगते हैं हम जानते हैं कि कॉन्शियसली हो सकता है नहीं किया, लेकिन अनकॉन्शियसली हो सकता है किया मैंने प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ वो रहना चाहिए, पर एटलीस्ट कॉन्शियसली तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम चैंटिंग आग बंद करके करें ही नहीं, हम देखते रहे कौन डिवोटी आ रहा है जा रहा है, उससे सीनियर डिवोटी जा तो नहीं रहा है प्रणाम करना है मुझे, है ना, तो वो नहीं कर
सकते जैसे कि यही प्रणाम वाला ही, जैसे कि मैं देखता हूँ एक बार पहले मैं सीनियर्स जैसे कोई महाराज वगैरह आते हैं तो प्रणाम करते हैं जैसे जनरली, और कोई जैसे मोटू को प्रभु जी कई बार देखता हूँ चले जाते हैं मैं चलो प्रणाम नहीं करता हूँ, तो करना चाहिए
वो डिपेंड करता है ना प्रभु, अगर आप हृदय से कर रहे हो और उस समय आप चैंटिंग कर रहे हो है ना, और आपको अगर पता है कि वो ऑफेंस नहीं फील कर रहे हैं इट्स ओके, आप कभी जब मिलते हो मान लो पर्सनली जाके मिलते हो तब तो आप प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो, हाँ तो अगर करते हो आपको मालूम है कि आप रेस्पेक्ट करते हो और अंदर से आप कर रहे हो देन नहीं भी करोगे इट्स नॉट ऑफेंस, है ना, तो मैटर करता है वो चीज, और वो भी हाँ है ना, वो भी डिवोटी भी समझते हैं जो सीनियर डिवोटी वो भी समझते हैं कि वो चैंटिंग कर रहे हैं या वो कोई अभी सर्विस कर रहे हैं वो नहीं भी कर रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर इट, जैसे कह रहे हैं कि आप वही चीज को देखते हो जो चीज आप देखना चाहते हो, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि कौन मेरे को प्रणाम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, क्या उन्होंने नहीं किया क्यों नहीं किया टेक ऑफेंस,
गुरु वगैरह के लिए तो ये अप्लाई था, जैसे प्रभुपाद के बारे में भी सुना है कि वो जा रहे थे और उनके कोई शिष्य थे वो गायत्री चैंट कर रहे थे नहीं किए प्रणाम, तो प्रभुपाद ने उनके साथ जो शिष्य जा रहे थे उनको बोला कि
उसमें भी देखो ना वो कॉन्शियसली कर रहे थे।